अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 10 है। नॉवल डॉक्टर दुआगू, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट 10। मार्था रोहांसी होकर चीखी, जौलिया उछलकर खड़ी हो गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मार्था पर झपटी तो पड़ेगी। इमरान ने नक्शा देखा तो उठकर दोनों के दरमियान हायल होता हुआ बोला, ऐ देखो खुदा के लिए तुम लोग कोई बड़ी मिसाल कायम ना कर बैठना। हटो सामने से, जौलिया झुल्ला कर बोली, मैं देखूंगी कि ये कितनी महजिब और बातमीज है। ओ बाबा क्या मुसीबत है। इमरान उसे शानों से पकड़े हुए कुर्सी की तरफ धकेल ले गया और बिठा देने की कोशिश करता हुआ बोला, कन्फ्यूशियस ने कहा है कि अगर वो औरतें मरने मारने पर तैयार नजर आए तो तुम ढोलक बजाना शुरू कर दो। मार्था खामोश खड़ी गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी तैर रहे थे। जौलिया दोबारा नहीं बैठी थी और इसने इमरान से अपने शाने पे ही छुड़ा लिए थे। मैं जा रही हूँ, वो दरवाजे की तरफ मुड़ती हुई इमरान से बोली, कोशिश करूंगी कि तुम्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में रखा जाए। क्यों कोशिश करोगी तुम, इमरान ने मुतहयराना लहजे में बोला। अपनी मर्जी की मुख्तार हूँ, जरूरी नहीं कि तुम्हें वजह भी बताई जाए, जौलिया ने कहा और बाहर निकल गई। इमरान ने सीटी बजाने के से अंदाज में होंठ सिकोड़े और मार्था की तरफ मुड़ा, जो मसहरी की पट्टी पर सर टिकाए सिस्कियां ले लेकर रो रही थी। अरे बाप रे, इमरान बेड पर हाथ फेरता हुआ बड़बड़ाया, औरतों को रोता देखकर इसका नर दस हो जाना पुरानी कमजोरी थी। औरतों को रोता देखकर इसका नर्वस हो जाना पुरानी कमजोरी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह चुप कराए क्या करे, लेकिन खामोश रह जाना भी बद इखलाकी थी, लिहाजा वह हकलाने लगा, वो देखो यानी कि वाह। फिर उर्दू में बोला, जी ना हलकान करो, और जल्दी से अंग्रेजी में कहने लगा, रोने से मेरा खराब हो जाता है, यानी कि भला बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अगर किसी मर्द ने तुम्हारी शान में गुस्ताखी होती तो घूसे मार मार कर हुलिया बिगाड़ देता। वो मुँह छुपाए बस सतूर रोती रही। अब इमरान भी खामोश हो गया था और इस तरह मुंह बनाए खड़ा था जैसे कोई सरबगार चपत रसीद करके भाग गया हो। बड़ी देर बाद रोना थमा और वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर बैठ गया। इमरान सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन वो इसी तरह बैठी रही। रोने से पलके किस तरह मुतवर्रम होती हैं और होंठों के उभार पहले से नुमाया नजर आने लगे थे। इमरान चुपचाप इसे देखता रहा। मर्दों पर कभी एतमाद ना करना चाहिए, वो बड़बड़ाई, वो ख्वाह कितने ही मासूम क्यों नजर ना आते हों, मर्द आजकल मिलते ही कहाँ हैं कि इन पर एतमाद करने या ना करने का सवाल पैदा हो। मत बोलो मुझसे, वो दूसरी तरफ मुड़ गई। खफगी की वजह, तुम्हारी वजह से इस वक्त मेरी तौहीन हुई है। मेरी वजह से क्यों, बस तुम्हारा ख्याल करके रह गई, वरना मुंह नोच लेती इस कुतिया की बच्ची का। तब तो गलती हुई मुझसे, कौमा का तुम्हारे दरमियान आ गया था, बताया क्यों नहीं कि इसका मुंह नोच लेने का इरादा था। मैं कहती हूँ मत बोलो मुझसे। अच्छा, इमरान ने सादत मंदाना अंदाज में कहा और मसहरी पर लेटकर कुर्राने लगा। मार्था थोड़ी देर तक फूली बैठी रही, फिर इमरान की तरफ मुड़कर बोली, क्या तकलीफ बढ़ गई है। मेरा ख्याल है कि शायद बढ़ ही गई है, वरना कुर्राता क्यों। डॉक्टर को बुला लाऊं? नहीं नहीं, ठीक हो जाऊंगा। फिर इमरान इसे रोकता ही रहा, लेकिन वो चली गई। इमरान आंखें बंद किए लेटा रहा। कुछ देर बाद जोसेफ ने आहिस्ता से इसे आवाज़ दी और एक विजिटिंग कार्ड की तरफ बढ़ा दिया, जिस पर सर सुल्तान का नाम तहरीर था। इन्हें अंदर भेज दो, इमरान ने कहा। और सुनो, इनकी मौजूदगी में माता को भी अंदर ना आने देना, किसी बहाने से बाहर ही रोके रखना। चौदह बाहर चला गया और दूसरे ही लम्हे में सर सुल्तान दिखाई दिए। इमरान ने उठना चाहा, लेटे रहो लेटे रहो। सर सुल्तान ने मुस्तरबाना अंदाज में हाथ हिलाकर कहा। वो मसहरी की करीब वाली कुर्सी पर बैठ गए। ये कैसे हुआ, इन्होंने पूछा, और इमरान को एक बार फिर वो किस्सा दोहराना पड़ा। बहुत बढ़ गए हैं ये लोग, सर सुल्तान ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या बताऊं, कोई ठोस सबूत नहीं है इन लोगों के खिलाफ। फिक्र ना कीजिए, जिसके जरिए सबूत फराहम करने के मौके मिलने की उम्मीद थी, इसने खुदकुशी कर ली है, इमरान पूछना बोला। इतने में बाहर से मार्था की आवाज आई, जो शायद जोरबक को समझाने की कोशिश कर रही थी। सर सुल्तान भी चौंक कर इस्तफामिया अंदाज में इमरान की तरफ देखने लगे। लड़की, इमरान आहिस्ता से बोला, वो वही दुआगु नर्स, सर सुल्तान ने भी राजदाराना लहजे में पूछा। नर्स ने सेक्रेटरी बुलाऊं? हाँ, क्या हर्ज है, सर सुल्तान ने कहा और निचले होठ पर जबान फेर कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। जोसेफ, इमरान ने हाथ लगाई, कौन है, आने दो। नहीं आने दूंगा बॉस, जोसेफ ने बाहर से अरबी में जवाब दिया, क्योंकि तुम मना कर चुके हो। अब कहता हूँ आने दो, इमरान की आवाज गुस्तीली थी। हरगिज ना आने दूंगा बॉस, क्योंकि इसने मुझे आबनूस का कंधा तराश कहा है। अरे तू भी इस मक्खन का पहाड़ कहकर माफ कर दे। क्या बात है, सर सुल्तान ने पूछा। मेरा बॉडीगार्ड सिनक गया है, कहता है कि चूंकि वहां इस वक्त सर सुल्तान बैठे हैं, इसलिए मैं किसी कम मर्तबा औरत को अंदाज नहीं देने दूंगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सर सुल्तान ने बड़े खलूस से कहा और फिर निचले होठ पर जबान फेरने लगा। जोजफ, क्या मुझे उठना पड़ेगा, इमरान ने फिर आंख लगाई। अच्छा बॉस, आ रही है, जोजफ ने मुर्दा सी आवाज में कहा। दूसरे ही लम्हे में दरवाजा खुला और मार्था अंदर दाखिल हुई। सर सुल्तान को उठना ही पड़ा, हालांकि वो एक कम रुतबा लड़की थी, लेकिन इस नस्ल से ताल्लुक रखती थी जिसमें औरत का एहतराम बतौर फैशन राइज है, इसलिए वो बैठे क्यों रहते। आप, इमरान ने सर सुल्तान की तरफ इशारा करके कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फंड अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। मार्था हक्का बक्का रह गया। फिर इमरान ने मार्था की शान में कसीरा शुरू किया। मिस मार्था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डोमेस्टिक अफेयर्स की लेक्चरर थी, आजकल डॉक्टर दुआगु से नफ्सियात पढ़ रही हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, सर सुल्तान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और वो मार्था का कपकपाता हुआ हाथ कुछ देर तक संभाले रहे। वो बहुत ज्यादा मरूब हो गई थी, क्योंकि इस मुल्क में वजारतों के सेक्रेटरी वजीरों से भी ज्यादा अहमियत रखती थी। बैठिए, सर सुल्तान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। जी जी हाँ, शुक्रिया जनाब, मार्था की सांस फूल रही थी। करा दूं इसका भी तारुफ आपके स्टैनो से, इमरान ने उर्दू में पूछा। मत बकवास करो, सर सुल्तान ने आहिस्ता से कहा और मार्था से अंग्रेजी में पूछा, आप लोगों को यहाँ अस्पताल में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं जनाब, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। शुक्रिया, सर सुल्तान मुस्कुराए और इमरान ठंडी सांस लेकर हौले हौले कुराने लगा। सुना है डॉक्टर दुआगु बड़े बाकमाल आदमी हैं, सर सुल्तान ने पूछा। जी हाँ, वो एक अच्छे माहिर नफ्सियात हैं, कभी मिलूंगा। मेरा ख्याल है कि अब आप इनसे मिल सकेंगे, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। यहाँ नहीं, सर सुल्तान ने कहा और इमरान की तरफ हाथ बढ़ाकर उर्दू में बोले, अच्छा बरखुदार, अब मैं चला, बहुत मोहतात रहो। इस लड़की से, इमरान ने हैरत से कहा, गधेपन की बातें हर वक्त ना किया करो, मुसाफा करके वो रुख्सत हो गए। मार्था बाहर तक इन्हें छोड़ने गई, लेकिन इमरान बस्तूर लेटा रहा। वापसी पर मार्था ने हाँफते हुए इससे कहा, इतने बड़े बड़े लोग تمسے ملنے آتے ہیں، مگر تم نے میرے متعلق ایک غلط بات کیوں کہہ دی تھی؟ ارے میں تو آکسفورڈ کی شکل بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ فارن ایفیئرز کے ٹکر کی چیز ڈومیسٹک افیئرز ہو سکتے ہیں، اس لیے کہہ دیا تھا، ان حضرات کے لیے ڈومیسٹک افیئرز بہت موٹے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر خوش ہو گئے ہوں گے، تمہارے کا مذاق اڑانے لگتے ہو۔ مارتھا نے بلاؤز کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک پڑیا نکالتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے پانی کے ساتھ دے دو، سوزش کم ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر دواگو سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں مل چکی ہوں، اچھے ہیں۔ تمہارے متعلق بتایا تھا، افسوس کر رہے تھے۔ تمہارے لیے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ تو پھر کرو نا، عمران کو رہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ کتیا کون تھی؟ سوئس قسم کی فاکس ٹیریئر، آنٹی 9 10 59۔ میں کیا کروں، یہ ساری لڑکیاں چند قسم کے آدمیوں میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ ان کے شوہر نہ ہوں۔ کتنی لڑکیوں سے دوستی ہے تمہاری؟ دوستی تو کسی سے نہیں، پھر کیوں دوڑی آتی ہیں تمہیں دیکھنے؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی دوسرا چوکر دستیاب کرنے میں دشواری پیش آتی ہو۔ سنجیدگی سے گفتگو کرو۔ میں سنجیدہ ہوں، میری تو آج تک کسی سے ایسی دوستی ہوئی جیسی تم سے ہے۔ اچھا، مجھ سے ہے؟ عمران بھوکلا کر اٹھ بیٹھا، پھر بازو دباتے ہوئے سی سی کرتا جھکتا چلا گیا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر دوڑ پڑی۔ بڑے بے احتیاط ہو، خدا کی قسم بڑے لاپرواہ ہو۔ وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت جوزف بھی اندر داخل ہو کر دھاڑنے لگا، باس میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ جاؤ جاؤ، باہر نکلو، شور مت مچاؤ۔ مارتھا اس کی طرف مڑے بغیر بولی، کیا بات ہے؟ عمران کرہا، تمہارے باپ نے مجھے ٹیلی فون پر گالیاں دی ہیں۔ عمران نے اسے گھور کر دیکھا، پھر چند لمحے بعد جلدی جلدی پلکیں جھپکانے رہنے کے بعد بولا، خامخواہ گالیاں دی ہیں؟ نہیں، میں بھی اکڑ گیا تھا۔ کیوں لگوں ایسے آدمی سے جسے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہ ہو؟ اور شب دے بخور کے بچے بات کیا تھی؟ کہنے لگے تو بدماش ہے، اپنے باس کو گنڈا گردی سکھاتا ہے۔ تیرے ریوالوروں کے لائسنس ضبط کر لیے جائیں گے، بھاگ جاؤ۔ عمران ہاتھ ہلا کر بولا، لل لیکن باس، ریوالوروں کے لائسنس؟ میں تو بے موت مر جاؤں گا۔ آج تک خالی ہاتھ نہیں رہا، میرے پاس ریوالور نہ ہو تو بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے میں بیوہ ہو گیا ہوں۔ بس جاؤ، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اللہ نے چاہا تو تمہارا سہاگ قائم رہے گا۔ جوزف باہر چلا گیا اور مارتا ہنسنے لگی، پھر بولی، لیٹو لیٹو، تم اٹھے کیوں ہو؟ میں اگر لیٹا ہی رہا تو اس کا سہاگ برقرار نہ رہ سکے گا۔ عمران کر رہا، جہنم میں جائے، میں کہتی ہوں تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ہے تو، عمران مرزا سی آواز میں بولا، لیکن لوگ آرام کہاں کرنے دیتے ہیں؟ تمہارے دعاگو صاحب کوئی ایسا بھی عمل جانتے ہیں جس میں درد میں کمی واقع ہو سکے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ چند ماہ گزرے ایک مریض آیا جو کئی دن سے شدید قسم کے درد میں مبتلا تھا۔ اس وقت وہ کرا رہا تھا جب ڈاکٹر نے اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ اسے ایک مخصوص کمرے میں لے گئے، اور آدھے گھنٹے بعد جب وہ مریض ان کے ساتھ آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی شخصیت ہی بدل گئی ہو۔ ہونٹوں پر مسرت آمیز چمک تھی۔ اس نے اپنے ساتھی سے بچکانہ انداز میں چیخ کر کہا تھا کہ درد حیرت انگیز طور پر رفع ہو جائے گا۔ کیا واقعی ڈاکٹر جادوگر ہے؟ عمران حیرت سے بولا، پتہ نہیں آخر اس نے کیا کیا ہوگا۔ خدا جانے، وہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، آوازیں باہر نہیں آ سکتی۔ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، شاید وہ کچھ کر سکیں۔ होती हुई बोली, मैं पूछ आऊं। इसके जाने के बाद इमरान भी बाहर आया और जोसेफ से बोला, अपना एक रिवॉल्वर मुझे दे दो। जोसेफ ने रिवॉल्वर हॉलिस्टर से निकालकर इसे देते हुए कहा, सारे चैम्बर भरे हुए हैं। इमरान फिर वापस आकर लेट गया, रिवॉल्वर कोट की जेब में डाल दिया था। मार्था ने इतला दी कि डॉक्टर दुआगू इससे 1 घंटे के बाद मिल सकेगा। क्यों अभी क्यों नहीं, इमरान ने पूछा। इसके कुछ मुअतकिरीन बैठे हैं, और तो ये लोग बेचारे डॉक्टर को अस्पताल में भी चैन ना लेने देंगे। डॉक्टर को इस बात पर अफसोस है कि इस हादसे की खबर अखबारात में भी आ गई। ऐसा ना होना चाहिए, अक्सर हो ही जाता है, इमरान ने मायूसाना अंदाज में कहा। लेकिन तुम्हारे मुल्क के लोग भी हैरत अंगेज हैं। यकीनन यकीनन, लेकिन माता तुमने कभी इस सुई के मुतालिक भी सोचा जो तुम्हारे बाजू में पेवस्त हो गई थी? बहुत सोचा है। क्या सोचा? कोई ख़ास बात नहीं सोची, बस यही सोचती रही हूँ कि आखिर सुई फेंकने वाले कौन थे और क्या चाहते थे। बड़ी अजीब बात है, क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स अपने दुश्मनों से वाकिफ ना होता हो? यकीन करो इमरान, मैं नहीं जानती, ना यहाँ किसी से मेरी दोस्ती है और ना दुश्मनी। मैं तो हमेशा से अलग थलग ज़िंदगी गुजारने की आदी रही हूँ। यहाँ ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड है और ना बॉयफ्रेंड। फिर जब किसी से दोस्ती ही नहीं तो दुश्मनी का सवाल ही नहीं, क्योंकि दोस्तियाँ ही दुश्मनी में तब्दील हो जाया करती हैं। अच्छा ये बताओ, मेरी दोस्त हो या दुश्मन, तुम किस गिनती में हो? मार्था हंस पड़ी। नहीं संजीदगी इख्तियार करो, इमरान बेहद संजीदा होकर बोला। मैं सोच रहा हूँ कि वो सुई भी मेरे ही लिए थी जो गलती से तुम्हारे बाजू में लगी। नहीं, मार्था उछल पड़ी, इसकी आंखों से खौफ झांकने लगा था। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? इमरान यकीन करो डियर, मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं, इसने बौखलाए हुए लहजे में कहा और खामोश हो गई। चेहरे पर तशवीश के गहरे साए नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद बोली, हाँ हालात ऐसे ही हैं। मैं तुम्हें किस तरह भी यकीन ना दिला सकूंगी कि आखिर कोई तुम पर हमला क्यों कर रहा है। ये गोली ये तुम्हारे बाजू में लगी है, इत्तेफाकिया तो नहीं हो सकती। मत सोचो, इमरान सर हिलाकर बोला, जहन को मत थकाओ। लेकिन मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? मुझे यकीन दिलाने की जरूरत ही क्या है? मार्था इसे फटी फटी आंखों से देखती रही, फिर आंखें धुंधला गईं और दो मोटे मोटे कतरे रुखसारों पर ढलक आए। इमरान बज़ाहिर तशवीश कुन अंदाज में दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन इससे लाइल नहीं था कि वो सो रही है। दफ्तर वो इसकी तरफ मुड़ा और हलक से एक तहैया रामेज आवाज निकाली, फिर बोला, अरे बाबा, तो मैंने क्या क्या कह दिया है जो इस तरह रो रही हो? वो कुछ ना बोली, लेकिन अब सिसकियां भी आंसुओं का साथ देने लगी थी। दोनों हाथों से मुंह छुपाकर वो मसहरी की पट्टी पर झुक गई। जब कोई औरत रोने लगती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इससे हमदर्दी जाहिर करूं या दो चार हाथ मारकर जिधर सिंह समाये दौड़कर चला जाऊं। मार्था की सिसकियां और तेज हो गईं, और जब कोई औरत रोने लगती है तो मेरा दिल चाहता है कि सारी दुनिया की औरतों को कत्ल कर दूं। इतने में जोसेफ फिर अंदर घुस आया। तुम बिल्कुल गधे हो, इमरान ने चिल्लाकर अरबी में कहा। जब कहीं अहमकों का पूरा जोड़ा मौजूद हो तो आवाज देकर आया करते हैं। जोसेफ ने दांत निकाल दी और बोला, मैं जानता हूँ बॉस के तुम इस मामले में आदिमुल मिसाल हो, इसलिए जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन ये सफेद बंदरिया रो क्यों रही है? बकवास बंद करो और निकल जाओ। मैं सिर्फ ये पूछने आया था बॉस कि क्या तुम कोई खतरा महसूस कर रहे हो? क्यों, रिवॉल्वर लिया था अभी? ओह वो कुछ नहीं, बस एहतियातन। जाओ दफा हो जाओ। जोसेफ माथा पर उचटती सी नजर डालकर बाहर निकल गया। मार्था खामोश थी, आंसू खुश कर लिए थे और मुंह फुलाए बैठी थी। पलके भी किसी कदर मुतर्रम नजर आने लगी और नाक के नथने सुर्ख हो गए थे। इमरान इससे कुछ ना बोला, फिलहाल छेड़ना नहीं चाहता था। चुपचाप लेटकर हौले हौले कुर्राने लगा, लेकिन मार्था इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई। इमरान का जहन अपने डॉक्टर दुआगू और उसकी पुरस्कार शख्सियत में उलझ कर सो गया था। कुछ देर बाद मार्था ने वेंटीबैग से आईना निकाला और पाउडर बफ से गालों पर हल्की हल्की थक्कियां देती रही। आंसुओं ने मेकअप तबाह कर दिया था। जब वो बाहर जाने लगी तो इमरान सिर्फ खक्कार कर रह गया। वो समझ गया था कि वह दुआगू ही के पास जा रही है। वापसी में ज्यादा देर नहीं लगी थी और इसने भराई हुई आवाज में कहा था, अब तुम चल सकते हो। इमरान ने उठकर कोट पहना। जख्मी बाजू वाली आस्तीन मार्था ने बड़ी एहतियात से शाने तक चढ़ाई थी, लेकिन इस दौरान में कुछ बोली नहीं थी। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो इमरान से खफा हो गई हो। इमरान बाहर निकल आया। डॉक्टर के कमरे तक मार्था ही ने रहनुमाई भी की, लेकिन वो अंदर नहीं गई। डॉक्टर आराम कुर्सी पर नीम दराज अखबार देख रहा था। इमरान को देखकर अखबार एक तरफ डालता हुआ सीधा बैठा, होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैं उठकर तुमसे मुसाफा नहीं करूंगा, उसने कहा, बस बैठ जाओ और अपनी खैरियत बताओ। सब खैरियत ही है डॉक्टर, इमरान तवील सांस लेकर बोला और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अफसोस है मेरे बच्चे, मेरी वजह से तुम्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। आपकी वजह से, इमरान ने हैरत से कहा। हाँ, मेरी वजह से। और तुम भी खामखा बनने की कोशिश ना करो, भला तुम पर अंधेरे में फायर किए जाने का क्या मतलब था। लेकिन कुछ नहीं, पूरी बात सुनो। मुझे दरअसल सजा मिल रही है क्योंकि मैंने एक नामालूम आदमी का कहना मानने से इनकार कर दिया था। कोई नामालूम आदमी मुझसे ये चाहता है कि मैं इसके लिए जासूसी करूं। उसने मुझे खत लिखा था जिसमें इसने कहा था कि मैं महकमा खाजा की सुराग रसानी बड़ी आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि इस महकमे के बड़े बड़े ऑफिसर मेरे मुत्तकिद हैं। मैं इनसे इसके मतलब की बहुत सी बातें मालूम कर सकता हूँ। उसने ये भी लिखा था कि अगर मैं इस पर आमादा हो सकूं तो इसे खत लिखकर एक मखसूस जगह पर रख दूं, जहां से वो इस तक पहुंच जाएगा। मैंने ना सिर्फ इनकार लिख दिया बल्कि धमकी भी दी कि अगर इसने आइंदा मुझे कोई खत लिखा तो वो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, आखिर आप ये सब कुछ मुझे क्यों बताना चाहते हैं? डॉक्टर दुआगू के होठों पर एक मनीखेज सी मुस्कुराहट आई और फिर इसने ठंडी सांस लेकर कहा, बरखुदा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम डिप्टी सेक्रेटरी की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते हो। अरे तौबा तौबा, इमरान मुंह पीटता हुआ बोला, भला आपको क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेशा यही है, इसलिए तुम हर चीज को इसी ऐनक से देखने के आदी हो गए हो। मैं नहीं समझा, क्या तुम पुलिस के लिए काम नहीं करते? करता तो हूँ फिर, लेकिन भला आपके मामले में इसकी गुंजाइश कहाँ? इमरान ने कहा, हो या ना हो, लेकिन तुम जैसे लोग गुंजाइश पैदा ही कर लेते हैं। डॉक्टर दुआगू बाएं आंख दबा कर मुस्कुराया। होगा, इमरान लापरवाही से शाने सिकोड़ कर ढीला छोड़ते हुए बोला, मैं तो आपसे अपनी मम्मी की खैरियत दरियाफ्त करने आया था कि डिप्टी सेक्रेटरी की खुदकुशी अचानक सामने आ गई, वरना भलापन किया जा सकता कि डिप्टी सेक्रेटरी किस्म के लोग भी दुआ तावीज के कायल होते हैं। कुछ भी सही, तुम खतरे में हो। दो जहरीली सुइयों से बच जाने के बाद रिवॉल्वर का शिकार बाला आखिर हो ही गए। अरे तो क्या, वो सुइयां भी मेरे ही लिए थी, कतई थी, आप कैसे कह सकते हैं जनाब? मेरा माफी शऊर। डॉक्टर रायनी कनबटी पर उंगली रख कर बोला। इमरान कुछ ना बोला। डॉक्टर इसे दांत पर नजरों से देखता रहा। कुछ देर बाद इमरान ने कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आखिर इन सुइयों का मकसद क्या था, जबकि शिकारों में से एक भी ना मर सका। लेकिन क्या अंधेरे में चलाई जाने वाली गोली भी मुझे बख्श दी? ये तो महज इत्तेफाक था कि वो बाजू ही में लगी, वरना थोड़ी सी मुस्कुराहट बाकी तो बराह रास्त दिल ही में सुराख होता। हाँ, ये बात काबिल गौर है। डॉक्टर द्वागु कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, अगर मेरा मामला होता तो मैं सोचता कि शायद वो लोग इस तरह मुझे अपनी खिदमत पर आमादा चाहते हैं, खौफजदा करके मुझे मजबूर करना चाहते हैं कि इनका काम करने पर तैयार हो जाऊं। और मेरे साथ तो शायद यही हुआ है। मुझे यकीन है कि बिल्ली के पंजे जहरीले थे, लेकिन जहर मौलिक नहीं था, सिर्फ कुछ दिनों के लिए जिस्मानी निज़ाम मुअत्तल कर देने के लिए कोई हल्के किस्म का जहर था, ताकि जिंदा तो रहूं लेकिन इन लोगों से मरूब हो जाऊं और वो मुझसे जो काम चाहें ले सकें। लेकिन वो सुइया इमरान ने फिर अपना सवाल दोहराया। खुदा जाने, डॉक्टर उकताए हुए लहजे में बोला और अपनी पेशियानी रगड़ने लगा, खैर मारिए गोली। इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद बोला, अब अगर आप इनका काम करने पर आमादगी जाहिर करना चाहें तो किस तरह करेंगे? 3789 पर फोन करके। डॉक्टर भराई हुई आवाज में बोला, तो फिर आपने टेलीफोन डायरेक्टरी की 17 तक गिन डाली होंगी। कुदरती बात है, वो किसका नंबर है? अपने यहाँ के महकमा सुराग रसानी के एक इंस्पेक्टर का। डॉक्टर ने तशवीश को लहजे में कहा, फिर आपने क्या किया? यही कि कभी इस नंबर को आजमाने की कोशिश नहीं की। इमरान मुतफकराना अंदाज में सर हिलाकर बोला, अब क्या इरादा है? समझ में नहीं आता कि क्या करूं। दोहरन से आपके कैसे ताल्लुकात हैं? कभी इससे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, नाम अक्सर सुनने में आया है। फिर जब इसकी लड़की तुम्हारे साथ नाश्ते वक्त जहरीली सुई का शिकार हुई तो बहुत ज्यादा सुनने में आया। ये सुना है कि इस वक्त ये कहानी शहर के बच्चे बच्चे की जबान पर है। अच्छा, एक बात और, इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, वो बिल्ली कैसी थी जिसके पीछे खूनखवार बिल्ला अंदर आया था? एक ही झलक देख सका, गालिबन सयामी थी, रंग सया था। ना जाने क्यों इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे करीब ही कहीं कोई तीसरा आदमी भी मौजूद हो। वो उठकर तेजी से खिड़की के करीब पहुंचा और सर बाहर निकाल कर इधर उधर देखने लगा। खिड़की में सुराखें नहीं थी और यकवी लॉन की तरफ मिलती थी। दूर दूर तक कोई नजर ना आया। वो फिर अपनी जगह पर वापस आ गया। डॉक्टर अदुआगु से टटोलने वाली नजरों से देख रहा था। इससे नजर मिलते ही इमरान थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बेहद संजीदा नजर आने लगा। क्यों, क्या बात है? डॉक्टर ने पूछा। कुछ नहीं, अब अपने साये से भी भड़कने लगा हो। तुम जैसे लोगों के लिए अच्छी ही बात है, डॉक्टर द्वागु ने बाएं आंख दबा कर कहा। फिर वो दोनों ही कुछ सोचने लगे। अब तुम क्या करोगे? डॉक्टर ने पूछा। आपको मशवरा दूंगा कि इन लोगों से जरूर रابطہ कायम कीजिए, लेकिन अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो? हो सकता है कि वो जुमला मुकम्मल करने से कबली खामोश हो गया। इमरान उसे टटोलने वाली नजरों से देख रहा था, लेकिन वो कुछ ना बोला। दफ्तर किसी ने दरवाजे पर बहुत ही जोरदार किस्म की दस्तक दी और डॉक्टर झुंझला का चीखा, कौन है? बॉस बाहर से जोरदार सी गुर्राहट सुनाई दी। वो सफेद बंदरिया बेहोश हो गई है और उसके मुंह से बकसरत राल बह रही है। इमरान के साथ ही डॉक्टर दुआगो भी को भी दौड़ा पड़ा था। हालांकि डॉक्टर ने इसे कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी थी। वो इस कमरे के करीब पहुंचे जब बेहोश माता को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। पार्ट 10 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। नॉवल डॉक्टर दुआगु का बकिया हिस्सा पार्ट 11 में समाप्त करवाइए।